पहले सखाओं का आदर करके उनके लिए व्यवस्था करो, कृष्ण के लिए पीछे। कृष्ण हमारे सखा हैं, ये मैं एक लोग सोच रहे हैं। कृष्ण हमारे सखा है, और कृष्ण के जो गोपलो क्या है, सखा के सखा है, तो सखा के सखा हमारे क्या लगे, इसलिए उनके ऊपर भी कुसुम की वर्षा हो रही है। कुसुम माने मृदु मधु वर्षा हो रही है, सखा वो कहते हैं मेरी हमारे पास और है ही क्या है, उनका धन क्या है,
पानी,
वो जल जीवन है, यदि जीवन न देना में तो सभी मर जाएंगे, तो हमारा ये जीवन यही है, हम इसी को देकर चिंतित के बात, इनकी नहीं सखा और उनके गाय चाहे सबका हूं जीवन देंगे। उस महाबली भी तुलसिया लगाया, कुसुमावली के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, उसके उससे सब कुसुम रूप हिम जल कणाओं के द्वारा छत्र की रचना कर दी और अपने शरीर से ही बन गए, अपने शरीर से ही छाता का उद्धार कर दिया, ये लोग अपना शरीर भी लगा दिया कृष्ण की सेवा में और उनके सेवकों की सेवा में लगाया। मन के द्वारा भावना किया पहले, इसे तन मन वचन धन सबके द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए, तब तक कृष्ण सपरिकार प्रसन्न होंगे। हे सखीगण, ओ हमारा कितना दुर्भाग्य, अचेतन प्राणी में वो धन्य है और हमारा जीवन कैसा दुर्भाग्यमय है। एक तो हम सब कुछ हमारा विपरीत है, मेघ तो कृष्ण जहां है वहीं पर पहुंच जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे तन मन धन से, और हम पहुंच जाएंगे कृष्ण का गोचारण हम देख सकेंगे, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं हम नहीं देख सकते, कैसे वेणु वादन करते हैं ये भी नहीं देख सकते, उनकी जो लीलाएं होती हैं उनको भी हम नहीं देख सकते, और इन मेघों का कितना जीवन सार्थक है, उनकी बेनी नाच सुनने के लिए हम घर से बाहर पैर नहीं रख सकते। यदि मान लिया कि हमने किसी तरह से घर से बाहर आकर के किसी तरह से छल बहाने से हम लोग निकल भी आए और कृष्ण को बेनी वादन करते हुए देखा, तो देखते ही मोह उत्पन्न हो जाता है, प्रेम प्रबुद्ध। अब वो लगाया था कहां, नेके। अब यहां लगाया किसने, अपने प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम का मोह बढ़ जाता है और उसी मोह से हम लोगों का जो आनंद है, सुख है, उनका दर्शन करने का और सुनने का, यह भंग हो जाता है, सुख से हम वंचित रह जाते हैं। ओहो ये कितने धन्य इनका भाग, जो कृष्ण की वेणु सुन करके भी और उनकी सेवा को भी उनको मोह नहीं होता और अपनी सेवा को नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ेंगे वो सेवा का। और हम लोग का क्या होता है, जो देखने का था वो भी देखने मोह से हम गिर जाती हैं, वो देखने से भी कृष्ण की सेवा वो भी देखने वास्ते भी नहीं, और हमारा ये सब खत्म हो जाता है, ये मोह बढ़ जाता है। उनका ये यथार्थ प्रेम है और हम लोगों का क्या है, ये प्रेम नहीं, ये मोह हमारा है। मोह किसको कहते हैं, अपने सुख के लिए जब हम कुछ करते हैं तो ये हो जाता है मोह। और सेवा में जबकि और उत्कंठा बढ़ती है, सेवा होती है, तब वो है प्रेम। अपने लिए जो कुछ होता है वो काम है, मोह है, और कृष्ण के लिए जो कुछ होता है वो आत्मन्द्रिय प्रतिबंधा करे बोले प्रेम, करे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिबंधा करे प्रेम। हम जो कुछ करते हैं अभी यदि हम कृष्ण के लिए करते हैं तो ये सेवा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, और भक्ति की भी काम यदि अपने लिए करें तो हो जाएगा ये। मैं भागवत पाठ कर रहा हूं और यदि सोचूं कि आज कुछ रुपये मिल जाएंगे इसके द्वारा, और लोग कहें वाह बहुत सुंदर चमत्कार ये पाठ करते हैं, और सभी लोग हमारी तरफ में आकर्षित हो गए, तो ये हमारा ये धान बैगन का खेत है। बैगन का खेत मैंने क्या है, बैगन का बगान, जाएंगे बगान से एक तोड़ लाएंगे और उसका भरता बना लेंगे, कभी सब्जी बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, तो खाएंगे, ये मेरा बगीचा है। ऐसा नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ लगाए, तब तक ये भक्ति होगी। और यदि हम इसको अपने सेवा में लगा दिया, अपने सुख के लिए जो भागवत कर रहे हैं, ठाकुर जी का आसन किया, बहुत तरह के चीजें आएंगी, उसमें कुछ तो हमारे पल्ले भी मिल जाएगा, बस हो गया भक्ति खत्म। किसे यहां पर कहते हैं, और उनका तो प्रेम है और हमारा कहां मोह, मोह बढ़ करके अपनी सेवा से वंचित हो जाती हैं, देखना भी नहीं चाहते। और ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, सुंदर सुंदर हवा चलती है, उनको सुख देते हैं, और हम लोग कोई भी सेवा नहीं कर सकते। एक देखने का आनंद होता है, वो भी आनंद मोह के वजह से समाप्त हो जाता है, वो आनंद अधिक नहीं अच्छा है जिसमें सेवा भूल जाते हैं। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर के कहीं जा रहे हैं, जाते जाते एक गांव में पहुंचे, एक गरीब और एक धनी दो उनके शिष्य। धनी वाला बनिया, बनिया था, धनी था, और दूसरा था निर्धन, वो ब्राह्मण था। परिवार इसका ब्राह्मण का भी एक पत्नी और वो, और इसका परिवार लंबा चौड़ा और खूब बिजनेस। रामायण ने सोचा जैसे हमारे तो काफी शिष्य के साथ हम लोग जा रहे हैं, यदि हम एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच जाएंगे, वो भक्तिमान है किंतु सेवा नहीं कर सकने के कारण बड़ा दुखी हो जाएगा, इसलिए हमको धनी बनिया जो हमारा शिष्य है उसके ही है, उसके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, वो अच्छी तरह से सेवा करके प्रसन्न होगा, हमारे शिष्य लोग भी प्रसन्न होंगे वहां पर अधिक सेवा पाकर। इसलिए दो शिष्यों को भेज दिया उनके यहाँ, जाओ उनके घर में कहाओ ये तुम्हारे गुरु जी आए हुए हैं और वहां पर बगीचे तक आ गए हैं, अब आ रहे हैं, और उसके मनोभाव को जान करके जो वो प्रसन्न होता है कि नहीं तो तुम लौटा है, बस वो चले गए। वहां जाकर के उनके घर में उनको बुलाया और खबर दिया ये गुरु जी आ रहे हैं, उनके साथ में बहुत काफी लोग हैं, वहां तक आ गए, अब आपके घर में आने पहुंचने वाले ही हैं, अब व्यवस्था करेंगे। वो बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के घर के अंदर में गया और सब व्यवस्था करने का भूल गया, जैसे ये हमारे गुरु जी के भेजे हुए ये लोग उनके सेवक हैं, इनकी सेवा भी होनी चाहिए, उनसे बात कुछ नहीं करके वहीं पर सब सामान जुटाने में और सब व्यवस्था करने में लग गया, और ये करो ये करो ये रसोई अच्छी होगी, ऐसा सब चीज की व्यवस्था में तल्लीन हो गया, और वो बेचारे वहां पर बाहर में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे वो आएगा तो कहेगा। पानी इत्यादि पिलाना भी भूल गया, पूछना भी भूल गया सब। थोड़ी देर तक ये बैठे और सोचा जैसे ये कार्य कैसा आदमी, गुरु जी आज तो प्रसन्न होकर के हम लोगों को भी आदर करना चाहिए था, और इसके घर में आए कि नहीं इसका कोई मनोभाव नहीं, देखा जो गया तो सो गया से लौटा ही नहीं, मालूम होता है ये सेवा की वृत्ति नहीं है। बड़े दुखी होकर के बेचारे लौट गए, बहुत देर तक नहीं। आप लोग भी कहीं जाएंगे और ऐसी ही घटना हो तो क्या करेंगे, कोई पूछा ही नहीं। कृष्ण के सखा लोग, कृष्ण ने भेज दिया सखाओं को, जाओ ये ब्राह्मण यहाँ के बड़े दयालु हैं, इनके पास में जाओ ले आओ कुछ भिक्षा, और गए और पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, उलट कर आगे देखी यार बस, कुछ कारण है सुना ही नहीं, यदि कुछ देखने का अवज्ञा से देख रहे हैं, अंत में दुखी होकर से लौट गए। लौट के आज कृष्ण ही लौट गए, कृष्ण की कृपा उन पर नहीं थी, ऐसे ही इनके शिष्य लोग लौट गए। काली महाराज वो तो गया घर में गया घुसा तो फिर लौटा ही नहीं, बहुत देर हो गई, तो हम लोगों ने देखा ये देर हो रही है, आप हमारे लिए प्रतीक्षा करेंगे इसलिए हम लोग चले आए। कभी आप चलो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब उसी शिष्य के पास में चलेंगे, वो निर्धन बात जैसे वो वहां पर चले तो पानी के लिए तो पूछेगा, पर सब लोग वहां पर चले गए। वो बेचारा वो ब्राह्मण था नहीं, वो कहीं भिक्षा के लिए गया और पत्नी थी दरिद्र परम दरिद्र, गुरु जी ने आवाज दी, गुरु जी तो देख करके कपड़े भी नहीं तन पर जो उनके सामने आए, रमन जी ने अपना दुपट्टा फेंक दिया, दुपट्टा फेंकने के साथ में अंगों पर उसे ओढ़ करके उनके पास में चरणों में गिरी और सबको अभिवादन करके वहां पर जैसा था कपड़े लगते कुछ बिछा दिए और उनको बैठा करके पानी के लिए पीछा, बड़े नीचे रूप में अभ्यागत स्वागत किया। तो ये आप लोग अभी थोड़े देर में हो जाती है व्यवस्था का, पति के लिए देखा जो पति तो है नहीं, अब कुछ करनी पड़ेगी, ये शरीर किस काम में आएगा। पासी में एक बनिया था बड़ा दुष्ट, उसके ऊपर उन्हें खुदी रखता था, उसके पास में चली गई, आप जो कहेंगे मैं राजी हूं, हमारे गुरु जी हैं उनके खाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है आप हमको दे, वो यही चाहता था, बहुत ऐसा किया था प्रस्ताव किया, तब असू अपने आप और सोने की चिड़िया अपने आप फंस गई, पता चले जाओ जो कुछ ले जाना है परम उदारता से, जो कुछ आटा घी मैदा बूरा चीनी दूध और शक्कर जो कुछ भी चाहिए दे दिया, और ये सब लेकर के बड़े मन के आनंद से गुरु जी के लिए भोग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा करके और उनको सबको खिलाया पिलाने की व्यवस्था कर, वे बड़े आराम के साथ में खा पी करके अब विश्राम थोड़ा दोपहर में करवट बदल रहे थे, और इतने में उसका पति आया, पति देखते ही गुरु जी को आश्चर्य चकित, अरे उनको कहाँ बैठाएं क्या खिलाएं क्या करें, चिंता में भरपूर हो गया। पत्नी के पास में दौड़ करके पहुंचा, क्या क्या आप चिंता न कर व्यवस्था सब हो गई है, खा पी करके आराम कर रहे हैं, अब आप हरी कथा सुनेंगे। इतने में शाम हो गई, पत्नी ने पति से कहा मैंने वादा किया उस बनिए से, ये शरीर तुच्छ ये तो एक दिन मरेगा, आग में जल करके भस्म हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, कि आज गुरु की सेवा में हमारा शरीर है, आज वहां चलना है, आज बहुत तुम हमारे कंधे पर बैठ जाए, बरसात होने लगी और कंधे पर बिठा करके ऊपर से छाता लेकर के और बनिए के घर में गया, वो घर में अपना था, ये घर को उतार दिया, पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, वो तो इसी की प्रतीक्षा करने जी ही गई, अरे तू भिजी नहीं तुम ऐसे ही चली आई कैसे, तो हमारे पति देव जाए, अरे एकदम उन्होंने कहा जैसे आप ये थोड़ा सा प्रसाद दीजिए, बस रामानुज का जूठा प्रसाद थोड़ा सा उनको एकदम आमूल पर जाओ, कहा मैं घड़ी कीड़े से भी गया पैर खाने के पीछे चली अर्चना घड़ी, मैंने ऐसी कुदृष्टि ऐसी पतिव्रता और ऐसी गुरु भक्ति कि ये थी, इस पर हम हमको धिक्कार है, और उन्हें लगा उनके चरणों में गिर, पतिदेव देख रहे हैं, तुम्हारे पतिदेव संत उनको लेकर के आए, कितने उदार कैसे हैं, गुरु सेवा के लिए इतना आदमी कर सकता है, मैं इसकी कल्पना कभी जीवन में नहीं कर सकता। बस उनके चरणों में गिर गया और कहा जी अभी मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अरे नहीं सवेरे आए, फिर सवेरे उनके चरणों में गया और सब कुछ जलांजलि दे करके और उनके चरणों में ये कर हरिनाम लेकर के और परम भक्त बन गए। और उसी समय सुरेश जी आंखें निकली हुई थी और वो वहां पर पधारे। गुरु जी को देखने के लिए आए। आज करीब करीब एक वर्ष हो गया कि 6 महीने आंखें उनकी निकाल ली गई हैं और वहीं पर पूरे से उस गांव में आए गुरु जी को देखने के लिए। बड़ी भारी सभा लग रही थी और उसमें बैठे हुए थे ये रामानंद जी उपदेश कर रहे थे। गुरु जी को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता हुई। रामानंद ने दिखा रही वो तो पूरे उसकी आंखें निकल ली गई। वो गुरु जी गुरु जी करते हुए दौड़ा और ये सुरेश सुरेश करते हुए जमीन को आलिंगन किया और उनकी आंखें निकल आई सचमुच और दर्शन करके तृप्त हो। पहले वाली की गुरु सेवा में देखो वो मोह में चुस्त हो गया, वैसे आनंद की जरूरत नहीं है। अतः इनकी पत्नी सब समय सावधान होकर के गुरु सेवा कर रही है। उसके लिए अपना लोक लज्जा सब कुछ को तृण में छोड़ दिया गुरु सेवा। इसलिए उसका सब खाना आप कल्याण हो, उसके संपर्क में जो आए उनका भी कल्याण हो। इसलिए हम लोगों को भी मेघों के से इन लोगों से शिक्षा लेकर के गुरु वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा में हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। भक्ति ऐसी चीज नहीं है जो अपने परिश्रम से उसको हम कर लेंगे। ये तो वृत्ति है ना, सर्व शक्ति की वृत्ति है। वो देखती है हमारे लिए शत्रु उत्पन्न हुआ है कि नहीं। यदि वो देखते हैं कि हमारे लिए शत्रु उत्पन्न हो गया है तब तो प्रकटित होगी। वो उनको मोह नहीं है, वो देखेंगे विचार करके कि हाँ इस क्षेत्र में हमको उतरना है तो वहां प्रकाश। इसलिए किसी चीज के द्वारा विद्या धन बुद्धि न्याय अपना प्रवचन ही न लभ्यो न मे भया बहुना सुते न जमे विरुते से न लभ्य। जब भगवान कृपा करके ये देखते हैं कि इसको अपने सेवक के रूप में वर्ण करना चाहिए, इस पर हमको कृपा करना चाहिए, कृपा पात्र के रूप में जब वर्ण करते हैं तभी वो भक्ति हृदय में होती है, अन्यथा नहीं। हम अपने विद्या बुद्धि से बल से विद्या से पढ़ लिख करके और तब हम तैयार होकर के भक्ति करेंगे वैसे नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धांत अगाध सब भरे पड़े हैं संसार, बड़े बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े गुणवान हैं, बड़े बड़े रूपवान हैं, प्रतिष्ठावान हैं, भाई उससे भक्ति नहीं आएगी। भक्ति आएगी ये कोमल प्रवृत्ति है, सेवन करने की प्रवृत्ति जब देखेंगे तो वहां पर स्फूर्ति हो जाएगी। तो गोपियां करें है हम लोग दुर्भागी हैं, यदि सेवा का अवकाश भी मिलता है उनके निकट भी पहुंचती हैं तो प्रेम प्रवृद्ध अर्थात तो मोह प्रवृद्ध हम लोग मोह में मोहित होकर के कोई उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमारा जीवन बेकार का है और ये सब समय सचेत रह करके प्रभु की सेवा करते हैं। परंतु मेघ समूह कभी भी कृष्ण के आनंद में कभी विरत नहीं होते। जब तक कृष्ण गोचारण करते हैं समय की प्रतीक्षा करते हैं, जब कृष्ण कभी यदि धूप में निकलते हैं तो उनके ऊपर छत्र बन करके उनकी छाया और कुछ तलवारी इत्यादि देते रहे। बसंत ऋतु सबको बनाए रखते हैं और हम लोग प्रेम ही ना होने के वजह से मोहन मुरली की तान सुन करके और मोह में अधीर हो जाती हैं, कोई सेवा ही नहीं कर सकती। घर में आबद्ध रहती हैं, है यदि हम मर जाती और मर करके मेघी होकर के जन्म लेती स्वच्छंद रूप से कृष्ण की हम लोग सेवा। इसी तरह से सबको ये देख रहे हैं कौन परीक्षित महाराज में, परीक्षित महाराज जी की ये भावना और ये भावना कहां तक जाती है गोपियों तक। और तब फिर इसमें पूर्णा पुलिन दौर्गाय पदाब जरा इत्यादि में उन्होंने अभिव्यक्ति की। यह हमारी भी भावना ऐसी ही होनी है। हम भी वैसा ही चाहते हैं, और उनको ये भाव की प्राप्ति भी हुई। नद सदा तपोधारी यम कुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन सवित मधुजे गृहन्ति पादजुगलं कमलोपहारा। नद सदा मैं को देखा, मैं का पानी बरसा और बरस करके धीरे धीरे वो पानी कहाँ आएगा, नदी में आए। उनकी दृष्टि वैसे ही पानी के रास्ते से जिधर धर चल रहा है अणु है ना, गोपियों का हृदय भी धरते ही पानी के साथ साथ में नदी हो सकते हैं। नदी का देखो तो कितना सौभाग्य, सचमुच में नदियां कितना कृष्ण से प्रेम करती हैं। तब वो कह रहे हैं नद सदा तद पधार्य मुकुंद, गोपियां अवस्था की भावना में, अवस्था मैंने होता प्रेम को लुकाने में बड़ी चतुर है। प्रेम वही प्रेम है जो लुकाया जा सके, छिपाया जा सके। जो प्रेम छिपता नहीं है ना, ऊपर से दिखलाता है आपको मैं बहुत प्रेम करता हूं, मतलब क्या हुआ, पता नहीं, प्रेम नहीं है वो, क्या है, काम है। क्यों कहा, क्यों कहा तुम जो प्रेम करता हूं, ये कहता है कोई प्रेम करने वाला या ऐसा नहीं कहेगा या करने वाली कि मैं प्रेम करता हूं आपके प्रति, तो हमारा प्रेम नाम का कोई गंध भी नहीं है। यह है न प्रेम गंधोस्ति दरापि नेह क्रंदाम में सौभाग्य धर्म प्रकाशितम बंसी विलक्षानन अवलोकनं बिना विभस्म जत प्राण पतंग कानम वृथा। मैं प्राण के पतंगों को, प्राण रूपी पतंगों को वृथा में धारण किया, मर जाना चाहिए। मरता क्यों नहीं, यही तो मुश्किल है, मरता नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है जो मरता नहीं, मर तो जाना चाहिए, मर नहीं अच्छा है। जिससे कृष्ण की सेवा नहीं, जिसमें प्रेम नहीं है कृष्ण प्रेम, उसका मर जाना ही अत्यंत आवश्यक। केनो आशाय प्राण नरोत्तम दास केनो ना जन्म, कृष्ण प्रेम नहीं हुआ और अभी तक जीवित हूं बेकार है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु जी हमारे अंदर में प्रेम ही नहीं है, न प्रेम गंधोक्ति दरापि नेह, थोड़ा भी नहीं है, किंचित मात्र में नहीं, लेस मात्र में नहीं, अरे गंध का भी लेस नहीं है। प्रेम की तो बात छोड़, प्रेम का जो गंध होता है वो भी हमारे हृदय में, आज हमारी ये दशा भी मैं जीवित रहता। बंसी विलास्यानन अवलोकनम, बंसी विलासी कृष्ण उनकी मुखारविंद का दर्शन किए बिना आज तक भी नहीं, आप में प्रेम है नहीं तो रोते क्यों हैं। तो उसके लिए रोता हूं किसके लिए, प्रेम
सौभाग्य
अपना ये दिखलाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए रोता हूं मैं कृष्ण प्रेम में रो रहा हूं, नहीं तो मुख थोड़ा सा लगा लू, लगा करके थोड़ा सा ऐसा कर दो बस अपने आप आने मिल जाएगा। ऐसा ही था, एक व्यक्ति रूप गोस्वामी की सभा में भागवत पाठ होता था, उसको कुछ नहीं होता था, पाठ कर रहे हैं रघुनाथ भट्ट जी, श्रोता रघुनाथ रूप गोस्वामी और सब गोस्वामी लोग सभा में, सबको कुछ न कुछ विकार हो रहा है भागवत पाठ से, कोई रो रहा है, कोई नाक झड़ रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई मूर्छित होकर के गिर पड़ा है, कोई हाथ उतार कर रहा है, किसी को पुलक रोमांच हो रहा है, और गोस्वामी अगार समुद्र की भांति आंखें खोल करके ऐसे ही बैठे, मानो उनको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, छोटी छोटी मछलियां पानी को हिला करके गंदा कर देंगी, और अगार समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां भी क्या करेंगी,
कुछ नहीं करती,
कुछ भी भाव नहीं, ऐसे समुद्र के समान भाव गंभीर। और वहां पर एक व्यक्ति था, वो दिखा जी सभी भाव में मन है, केवल मैं ही ऐसा हूं कि मुझे भाव है। दूसरे दिन वो मित्र संग में ले आया और सबके देखते देखते कोई नहीं देखे, छिपा करके इसी तरह से और थोड़ा सा यहाँ पर लगा दिया, आंखें उसकी दिया, सर हो गई, गीली हो गई। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो रघुनाथ भट्ट जी उठे और उसको गए और उसको आलिंगन कर दिया। भाई आज तक हमने सुना था जो आंखें कृष्ण प्रेम में नहीं बरसती हैं उनको दंड लोग देते हैं, किंतु मैंने देखा नहीं कि कोई ने दंड दिया। आज आपको ही मैंने देखा, आप ही धन्य है कि आप इन निगोरी आंखों को दंड देने के लिए इसमें मृत भर दिया। आज मैं देख करके बस सब सुनते ही बस उनके आंखों में भी हम लोगों को कोई प्रयास है, नींद आती है हरी कथा में, ऐसी ऐसी सुंदर कथाओं में हृदय नहीं होता कि ऐसे ही हमारी भी भक्ति हो, तो सुनना किस काम का, किस काम का सुनना। यदि लोग आज तक सुनते सुनते लोभ ही नहीं पैदा हुआ जो हमारा हृदय भी ऐसे कृष्ण के प्रति, कथाओं के प्रति, प्रेम के प्रति, भक्ति के प्रति ऐसा समर्पित हो, तो किस काम का, किस काम का ही? तो यही कह रहे हैं महाप्रभु जी, अभी तक मैं जीवित हूं, अरे एक मछली पानी के बिना छटपट करते हुए मर जाती है, एक क्षण भी जीवित नहीं रहती, पानी में से निकालो क्या होगा, थोड़ा छटपट करेगी, आंख उलट जाएगी और बस एक सेकंड दो सेकंड। और हम लोगों का कृष्ण सेवा, गुरु सेवा, यह सबसे वंचित रह करके भी जीवित रहना है। साधु संतों का संग छोड़ करके दूर रहते हैं जी, यहां पर कष्ट होगा, आराम नहीं होगा, बेआराम हो जाएगा, यहां रहने से कोई सेवा में रखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इससे सब दूर रहते हैं, साधन नहीं समझते हैं, ये सब साधन है। हम लोग हरि कथा इतना सुंदर सुनते हैं, जो सुनाते हैं उनके लिए क्या देते हैं, क्या देते हैं देखो विचार। और जिनको देखने से ये हरि कथा की स्फूर्ति होती है, जिस कथावाचक को वो कथा सुनने वालों को क्या देता है, बस ऐसे ही जिनके देखने से ऐसी सुंदर कथाएं आती हैं, कथावाचक उनको क्या देगा। और जिस स्थान पर आने से ऐसी कथाएं स्फूर्ति प्राप्त होती हैं, उस स्थान की कितनी महिमा। किंतु हाँ, ये सबको ऐसा नहीं हो, जिनको थोड़ा सा लोग उत्पन्न हो गया भक्ति के प्रति, कुछ भाव उत्पन्न होगा वो उनके लिए। मैं सर्वस्व देकर के भी उस कथावाचक से ऋण नहीं हूं, ऋण नहीं हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन कथा श्रोताओं को मेरे लिए कोटि कोटि बार नमस्कार है, इनको देखने से मेरे हृदय में ऐसी कथाएं आती हैं, ये लोग शिष्य नहीं हमारे, ये गुरु हैं।
जगत उद्धारण बंधु,
जगत उद्धारण बंधु, बंधु कहते हैं जगत उद्धार, जगत को उद्धार करने वाले। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी प्रणाम करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, क्यों परीक्षित जी नहीं रहते तो ये सब कथाओं की स्तुति उनके हृदय में होती और ये रासलीला प्रसंग और ही जो कारण है ये सब संभव होता। सनातन गोस्वामी गारंटी के साथ में कह रहे हैं उनकी भाव की प्राप्ति हुई है, किनको,
गोपी भाव प्राप्त परीक्षित महाराज,
परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के लिए लिखा, संदेह है, संदेह है। मान लो कि वो कृष्ण लीला के सुखदेव हो तो सुख ही तो है, गोपी होंगे, गोपी भाव से उनकी सेवा करने की आकांक्षा ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी ये कितनी उन्नत है हमारे कितने हम लोगों के लिए दीजिए। असल में ये करुणा है सनातन गोस्वामी, बेहद भगवान समय को यदि कोई नहीं पढ़े और भागवत की टीकाओं को नहीं पढ़े, सनातन गोस्वामी की महिमा को स्पर्श नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, कोई नहीं कर सकता है। सनातन गोस्वामी का इतना हृदय ऊंचा है ये कोई नहीं, इन्होंने स्पष्ट कर लिया उसको तो प्रेम भक्ति हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण सदा उपधार मुख में। कल इसकी हम लोग व्याख्या करें।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय। तायनो विरह कर्तव्या जुहाव कुत्रेति तन्मयतया सर्व तं सर्वभूतरिति।
पहले हम लोग लोकों की काम विश्वास विश्वास तथे ब्रज प्रसून कहा हम लोग इसकी व्याख्या में व्याख्या की ये कहा जड़ चेतन तारिक मेघ गोपियों की भावना उनके प्रति भी बड़ी सुंदर हो रही है। वे भी कृष्ण और बलदेव की जैसी सेवा पाते हैं, हम लोग उनके लिए हम लोगों के लिए यह दुर्लभ है उनकी सेवा। ये पूर्व रास्ता और श्रीमद ठाकुर ने कहा कि पूर्वी राज्य जीवों के लिए सहायक और कोई संभव नहीं, क्योंकि और सब होता है मान मिलन के बाद, मिलन के बाद में मिलन के बाद में मान प्रवास इत्यादि वो जीवों के लिए संभव अभी नहीं साधन अवस्था में नहीं। इसलिए यहाँ पर साधक भी भगवान के लिए ऐसे ही छटपट करेंगे जो उनको हम कैसे मिले कैसे दर्शन करें, तो उनके लिए ये तो इसके लिए कह रहे हैं कि मेघों को जो अवसर प्राप्त है और वे जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं हम लोगों के लिए वैसी संभव है। इसलिए चक्षु बधार अर्थ कृष्ण से मित्रता उन्होंने की है, सब बपू अपने बपू को ही अम्बुद आप पत्र आज हम लोग दूसरा श्लोक ये गोपियां कह रही हैं नर्दस सदा तत्व पदार ये मुकुंद अवक्त लक्षित मनोभव भक्त मेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई निगाय गृणन पिपाद ज्वलम कमलोपहार। साधारण अर्थ यह है कि गोपियां एक दूसरी सखी से कह रहे हैं और इस विधर्भवता में महाराज परीक्षित अपनी मैया को कह रहे हैं, ये कथा है। एक सखी दूसरी सखी को अपने जो भाव उनके अंदर में हो रहे हैं उसके द्वारा विभावित नेत्रों से कृष्ण को देख रहे हैं कि कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं और ब्रज और ब्रज के जितने भी प्रत्येक वस्तुएं हैं पदार्थ हैं जीव हैं जंतु हैं फिर गुणमलता सभी लोग कृष्ण से वैसे ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं भाव के द्वारा। उनकी दृष्टि हठात ऊपर से नीचे आई, उन्होंने नदियों को देखा, नदियों को नदी के रूप में नहीं देखा प्रेयसी के रूप में देखा, प्रियतमा के रूप में देखा, गोपी के रूप में देखा। तो वो कह रहे हैं हे सखियो मुकुंद की बेनी को सुनकर नदियों में आवर्त आता है, ये आवर्त आवर्त नहीं है बल्कि प्रेमोत्पाद से कामोत्पाद से मैंने प्रेमोत्पाद से उनकी धारा रुक जाती है, कुछ कुछ बंद हो गई तो धारा रुक गई, रुक ये रुक रही है ये प्रेम उत्पात नहीं है, ये आवर्त नहीं है। और ऐसे प्रेमोद्रेक से उनकी तरंगे भंग हो जाती हैं, तरंग रूप बाहु के द्वारा वे कमलों का हाथों में उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। हम लोगों को कहा इतना सौभाग्य होगा जो हम ऐसा कर सकते। सनातन गोस्वामी जी से क्या बतला रहे हैं, उस प्रकार से कृष्ण को बंसी वादन करते हुए वन में देखकर गोपियां अपने घरों में दल की दल अपने सजातीय सखियों के साथ में परस्पर परस्पर घूम रही हैं। वो ब्रज भूमि का कितना सौभाग्य है, और ब्रज भूमि में रहने वाले जितने पशु पक्षी चुंडा गुलमा आकाश इत्यादि जितना है, ये सबका कितना परम सौभाग्य है। ये तो ये जो यमुना की द्वीप पड़ती है, मानसी गंगा द्वीप पड़ती है, ब्रज की नदियां, ये कृष्ण की कृपा पात्रों की, महाकृपा पात्रों की पात्रों में सबसे ये श्रेष्ठ है। ये नदी नहीं है, कृष्ण के महाप्रेत प्रसाद को धारण करने वाली करने वाले जो पात्र हैं, उन पात्रों में बाहिक दृष्टि से अचेतन होने पर भी ये अचेतन नहीं है। उनमें और देखो तो जमुना जी का कैसा सौभाग्य, मानसी गंगा का क्या, और इसी के बहाने नदी जाति की ही वो प्रशंसा कर रहे हैं। कोई सखी कह रही है सखियां यमुना न दस सदा उपधार्य मुकुंदी, और यमुना और मानस गंगा, ये नदी कोई कहता है ये नदी है, ये नदी नहीं, ये समस्त नदियों में प्रधान है, और ये नदियां नहीं कृष्ण की प्रेयसियां हैं, ये जमुना नहीं है कालिंदी है। कलिंद नामक पर्वत की बड़ी सुंदरी कुमारी है। कृष्ण की प्रशंसा सुनकर, वृंदावन की प्रशंसा सुनकर हिमालय के अंतर्गत में कलिंद पर्वत से ये दौड़ी भी जा रही है, बड़ी जोर से दौड़ी जा रही। इनका महात्मा अत्यंत अधिक है, ये अनर्वचनीय, वचनों के द्वारा जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनर्वचनीय वेणुनाद को सुनकर, वेणुनाद नहीं अमृतमय, ये एक सुधा धारा है, सुधा धारा, ये मुकुंद के मुकुंद का वेणु नाद नहीं बल्कि मुकुंद ही गान कर रहे हैं। तो मुकुंद किस लिए, इसके तीन अर्थ बतलाए जाते हैं, जिसमें पहला है मुह मुक्ति, मुक्ति ददाति मुकुंद, और दूसरा अर्थ है मुक्ति को भी सुख बतलाकर, मुंह मुक्ति सुखम सुखम सुस्वा प्रेमानंदम ददाति, प्रेम के आनंद को देने वाले, यह है मुकुंद। विमानों अपनी न ग्रहण होंगे, भगवान के भक्त लोग या दूसरों को भगवान यदि देना चाहते हैं मुक्ति, तो वो भक्त लोग नहीं देते, अत्यंत गर्हणीय समझकर, गंदी की समझकर से नहीं देते, तो क्या देते हैं उनको, प्रेमानंद देते हैं। और जिनको मुक्ति की जरूरत नहीं है, जिनको प्रेम भी है, उच्च कोटि का प्रेम जिनको है, तो उनको भी प्रेम की भी देने की कोई बात नहीं है। उनका कृष्ण का सुंदर मुखार बिंद चाहिए, दीक्षित मुखार बिंद, हाथ से युक्त स्मृति युक्त मुखार बिंद चाहिए, इसलिए मुंह कुंद कुंद वत मुंह मुखम प्रस्फुटितम
प्रफुल्लित
है ऐसे गोपियों की तरफ देख करके यमुना की तरफ में देख करके अत्यंत मंद मुस्कान के साथ में जो बंसी वादन कर रहे हैं वो मुकुंद तो ये नदियां भी नदी नहीं उनकी प्रेयसियां उन मुकुंद की गीत को सुनती ये अपने कानों से सावधानी पूर्वक कानों के द्वारा मुकुंद के गीत को लेकर हृदय में धारण करती है ये नदी और तत्क्षणात् जलभ्रम विकारू आवर्त ये हृदय में उनका आवर्त हो जाता है प्रेम से घूमने लगता है यह काम वेग माने प्रेम वेग है जिससे उनकी धाराएं रुक जाती हैं आ रही है कहां वहां से
पर्वत
कलिंग पर्वत से उनकी बेटी है और यहां आकर के वृंदावन में जा कहां रही थी पति से मिलने के लिए जा रही है समुद्र की तरफ किंतु यहां कृष्ण के बंसी के ध्वनि से आबद्ध हो गई और जाना भूल गई उनकी धारा रुक गई जब रुक गई ऊपर से पानी किंतु आ रहा है दौड़ रही है खूब जोरों से और इधर में नीचे जाने जाना वो भूल गई वहीं पर नीचे का पानी वहीं वहीं तक रह गया नीचे का पानी भी ऊपर आ गया तो नीचे का पानी आ रहा है कृष्ण की तरफ में ऊपर वाला जा रहा है इस तरह से होते हुए वहां पर होने लग गई आवर्त आवर्त माने
भाव
भाव सुनने से ये हुआ या देखने से हुआ और उसके द्वारा भग्न हो गया उनका उनकी धारा भग्न लक्ष लक्ष विष्णुओं की मालाओं भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों का आलिंगन किया अथवा मुकुंद गीत में भी लक्ष्मी जी हैं लक्ष्मी माने शोभा शोभा माने अमृतमय धारा है वो जो लक्ष्मी है संपत्ति है उसके द्वारा भी व्यंजना कर रही है हमने उसको धारण किया किसी को संपत्ति को संपत्ति माने वेणु गीत की ध्वनि को वो संपत्ति है अपने हृदय में धारण की किंतु रख न सकी घूमने लगा वही उनका वेग है प्रेम का वेग है कृष्ण वृंदावन में मधुर मुरली बजाई अजग्नु अन्नो अन्नम अलक्षितो जमा घर के कामों को यथा जगहों पर छोड़कर सभी भगी का कहां भगी बंसी गीत के पीछे पीछे भगी क्यों भगी बंसी की ध्वनि ने उनके हृदय में जाकर के उनकी सबसे बड़ी जो संपत्ति मन मन को चोरी कर दिया और लेकर के कहां चली वो अपने प्रभु के पास में प्रभु ने इसीलिए भेजा था गोपियों के हृदय से उनका मन निकाल करके चोरी करके ले आओ गोपियों ने देखा हमारे सामने ही ये चोरी चोर करके ले जा रहा है बस उसके पीछे दो शुद्ध बुद्ध नहीं रही कपड़े संभालने की शुद्ध नहीं रही किसी बात की शुद्ध नहीं रही एक याद आ जाती है मुझको अपने महात्मा जी की हम लोगों में महानंद ब्रह्मचारी थे गुरु जी के गुरु भाई पीछे से महानंद वो पीछे से परमहंस महाराज जी मायापुर में उनका
इधर भी तो आए थे
डॉक्टर यहाँ पर हमसे बहुत स्नेह रखते थे जब मैं पहले आया था तो हमको वही तिवारी जी सब सुना करते थे तैयारी तिवारी जी तैयारी जी बहुत स्नेह करते और 100,000 नाम जरूर करते थे उसे अधिक निश्चित रूप से। कलकत्ते मठ में महाराज जी ने उनके नाम से वो कर दिया था कलकत्ता का, और वहीं उनको मठ रक्षा कर दिया। तो वहां पर अधिकांश क्या करके प्रेस देते थे प्रेस का काम, तो सवेरे हरिनाम करते थे 9 बजे 10 बजे तक पूरा, किसी से बात चलता है घर में कोने की तरफ में लिख कर देते, कोई उनसे बातचीत न करे और निश्चिंत होकर के नाम करते। एक दिन एक चोर आए और उनका लोटा या क्या था और कोई कपड़े थे, वो तो कर रहे थे इधर दीवार की तरफ में कोने मुख में और दरवाजा था पीछे की तरफ, और चोरी किया लोटा और उनका कपड़ा टपड़ा ले करके या कुछ बैग होगा कुछ होगा वो लेकर के चल। हटा करके उन्होंने ऐसे देखा तो देखा अरे तो चोरी करके ये सब कुछ ले गया। तो वो क्या किए जैसे जल्दी से एक हाथ में माला है हरिनाम कर रही और वो कपड़े में आधा गर्मी का दिन आधा वो पहने थे और आधा यहाँ पर रख करके ऐसे हरिनाम कर रहे, पाना भी बांधे नहीं थे वो साधारण से ढील जाए, और उधर में चोरी करके वो चोर निकला और उधर में वो हरिनाम कर रहे हैं और बस दौड़े तो वो कपड़ा भी इधर से हटने लग गया और इधर ऊपर से भी और वो गिरने लग गया, कहाँ क्या हो रहा है बस एकदम दौड़ चोर 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 चोर। इतने में तो उनका पैर लटपट टपट गया, गिरते गिरते बच गए और चोर लेकर के भाग गया। ऐसे ही ये गोपी कृष्ण ने बंदोबंद की बजाई चोर घुस गया हृदय में और लेकर के चोर सब जगह नहीं जाएगा, चोर जानता है कि माल कहाँ मिलेगा तो माल के यहाँ जाएगा, हम लोग के अब तुम्हारे हृदय में नहीं जाएगा क्यों।